मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, दो दिन के गैप के बाद आज आप सभी का एकेडमी फॉर एक्सीलेंस में स्वागत करते हुए मुझे बहुत हार्दिक खुशी हो रही है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही दोस्तों स्वागत है उन 13 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं प्रशांत कुमार सिंह इलाहाबाद से, अमित कुमार गुप्ता रायपुर छत्तीसगढ़ से, सुनील कुमार हजारीबाग बिहार से, युवा सूर्य कुमार हैदराबाद से, दिनेश सिंह भरतपुर राजस्थान से, अभिषेक पांडे इलाहाबाद से, देवेंद्र कुमार मीना जबलपुर से, विवेक कुमार मिश्र प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, शशि भूषण राणा हजारीबाग से, रंजीत कुमार राम दरभंगा बिहार से, पवन पटेल खरगोन मध्य प्रदेश से, ऋतु भास्कर इलाहाबाद से और इंदु अविनाश आजमगढ़ से। प्रशांत, अमित, सुनील, युवा सूर्य कुमार, दिनेश, अभिषेक, देवेंद्र, विवेक, शशिभूषण, रंजीत, पवन, ऋतु और इंदु, आप सभी का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज सप्ताह का पहला दिन है। मैं रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी स्टूडेंट को यह सलाह देता हूं, बिन मांगी सलाह कह दीजिए कि प्लीज आप अब कम से कम, चूंकि आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपकी एक प्रतिबद्धता हो जाती है एकेडमी के प्रति, और इसमें कोई दो राय नहीं कि एकेडमी की भी आपके प्रति एक प्रतिबद्धता हो जाती है, तो हम अपने दोनों ही लोग इस कमिटमेंट को पूरा कर सकें। दोस्तों, इसके लिए एक काम आप करना बिल्कुल न भूलें प्लीज, और वो ये है कि आप डेली ऑडियो सुनना बिल्कुल कभी भी बंद न करें, और किसी वजह से यदि किसी दिन मिस भी हो जाता है तो आप उसे नेक्स्ट डे जरूर सुने। आप देखेंगे कि जब तक आप क्लास में आएंगे ये डेली ऑडियो आपके अंदर एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर चुका होगा जिसके आज जिस पर सच पूछे तो क्लास के 15 दिन में जो खेती की जाएगी कह लीजिए या जो बीज बोए जाएंगे वो ज्यादा उपजाऊ होंगे, ज्यादा उपयोगी भी होंगे। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। और दोस्तों, इसी के साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा, एक हमारे दोस्त हैं राजेंद्र प्रजापति जो आगरा से हैं उत्तर प्रदेश से, इन्होंने मेल से सूचित किया है कि इन्होंने यूपी पीएससी का मेंस क्वालिफाई कर लिया है और इसका श्रेय उन्होंने इस डेली ऑडियो को दिया है। तो राजेंद्र प्रजापति जी, हमारे सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की तरफ से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की तरफ से और अपनी ओर से मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं और भविष्य की सफलताओं के लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। मित्रों, मुझे एक मेल आया है जिसमें 15 दिन की क्लासेस के बारे में बताने के लिए कहा गया है। पहले भी इससे संबंधित मेल आते रहते थे कि सर, इन 15 दिन की क्लासेस के बारे में आप कुछ जानकारी दें। तो सबसे बड़ी बात तो यह है फ्रेंड्स कि अगर आप इस .com पर जाएंगे तो उसमें 15 दिन की क्लासेस के बारे में पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उसमें दाखिला लेने की क्या प्रोसीजर है। सिंपली अब मैं आपको बता दूं कि अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अभी ₹2000 दे करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है और फिर जो रिमेनिंग फीस होगी वो आप आने से पहले देंगे। उसके बारे में आप जब .com पर जाएंगे, FEIS.com पर, और उसमें जब आप क्लासेज वाले को क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी, और वो आपको रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उस पर जाना भी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों ताकि आपको पता लग सके कि ये क्लासेस किस तरीके की हैं। ये क्लासेस कन्वेंशनल क्लासेस नहीं है, जिसको कह लीजिए कि ट्रेडिशनल क्लासेस नहीं है जहां कि आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की क्लासेस हैं। थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को बता दूं, चूंकि अब मैं इस बात को छेड़ चुका हूं कि यहां डेली 6 घंटे मिनिमम लेक्चर्स होते हैं, डेढ़ डेढ़ घंटे का एक लेक्चर होता है, फिर बीच में थोड़ा सा गैप होता है। 6 घंटे डेली होते हैं तो 15 से 90 घंटे की पढ़ाई होती है, और डेफिनेटली कुछ घंटे ज्यादा भी हो जाते हैं। लास्ट क्लासेस जो होती हैं कभी लंबी खींच जाती है। फिर गेस्ट फैकल्टी के भी लेक्चर्स होते हैं जो बिल्कुल लास्ट में होते हैं। कुछ हम गेस्ट भी इन्वाइट करते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही विशेषज्ञ होते हैं, उनका भी इंटरेक्शन आप लोगों के साथ कराया जाता है। दोस्तों दरअसल ये जो क्लास है ये बेसिकली सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाली क्लासेस नहीं है, ये तैयारी कैसे की जानी चाहिए इसके बारे में बताने वाली क्लासेस हैं। ये आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की क्लासेस हैं। जो 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपको मालूम है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी भी कह सकते हैं, इन चारों पर सबसे ज्यादा क्लासेस होती हैं। और इन चारों सब्जेक्ट्स को आपको कैसे पढ़ना चाहिए इसके बारे में आपको मॉडल्स बताए जाते हैं कि कैसे आप इन सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड करेंगे, कैसे इसके बेसिक्स को आप समझेंगे और किस तरीके से फिर इन सब्जेक्ट्स पर पूछे गए सवालों के आप जवाब देंगे। ये जो आपको मॉडल्स बताए जाते हैं, बेसिक्स बताई जाती हैं, प्री के हिसाब से भी बताए जाते हैं और मेंस के हिसाब से भी बताए जाते हैं। इसके बाद रिमेनिंग जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एनालिटिकल पावर कैसे डेवलप करेंगे, अखबार आपको कैसे पढ़ना चाहिए, एनालिसिस आपको कैसे करनी चाहिए, आपको निबंध कैसे लिखने चाहिए, जो आपका प्री का जो सेकेंड पेपर होता है उसको कैसे सॉल्व करने चाहिए, एग्जामिनेशन की पूरी स्ट्रेटजी आपको किस तरीके से बनानी चाहिए, आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, फिर जनरल स्टडीज का जो फोर्थ पेपर होता है मेंस का, जो मोरलिटी एप्टीट्यूड वगैरह से रिलेटेड होता है, उसकी भी क्लासेज होती हैं, इंटरव्यू कैसे दिया जाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर यह है कि सिविल सर्विस में प्री से लेकर के और इंटरव्यू तक और आपके मनोविज्ञान से लेकर के लॉजिकल पावर तक की जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी इस क्लासेस में आपको बताने की कोशिश की जाती है। दोस्तों फिर ये क्लासेस खत्म हो जाती हैं और क्लासेस खत्म होने के बाद हर वीक जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है जो उनके मेल पर हर सप्ताह भेजा जाता है। तो इस तरह से 1 साल तक लगातार आप एक तरह से कह लीजिए जीवंत रूप से आप एकेडमी से जुड़े रहते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि लगातार आपके दिमाग में वो जो चेंजेस की एक प्रोसेस शुरू हुई है वो धीरे 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 मजबूती तक पहुंच जाए। तो इस तरह से आपको 50 लेक्चर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरा यह मानना है कि इन लेक्चर्स को समझने के लिए जो स्पेशल ऑडियो के जरिए दिए जाते हैं बहुत जरूरी है कि आप क्लासेस अटेंड करें। ऐसा तो नहीं है कि बिना क्लासेस अटेंड किया हुआ स्टूडेंट इसे समझ ही नहीं सकता है, लेकिन जो एक बार क्लास अटेंड कर चुका है उसकी पकड़ इन ऑडियो पर बहुत ज्यादा होगी। कुल मिलाकर के दोस्तों यही प्रोसीजर है। थोड़ी सी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स यहां आते हैं बट नेचुरल है कि वो पहली बार आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, खासकर लंच और जो ब्रेकफास्ट है वो तो फीस में ही ऑलरेडी शामिल है। ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग टी वो आपके फीस का ही हिस्सा है। हाँ, रात का जो भोजन होता है उसकी व्यवस्था आप लोगों को खुद करनी पड़ती है। तो आप लोगों के जो रहने का इंतजाम है यदि आप चाहेंगे तो वो एकेडमी की तरफ से कराया जाता है और उसका जो पेमेंट है वो आप लोगों को अलग से देना होता है। और वहां फिर ऐसी जगह पर इंतजाम कराया जाता है जहां की आप रात का भोजन अवेलेबल होता है, आप जा सकते हैं और वहां का भोजन ले सकते हैं। यह हम लोगों ने इसलिए किया है दोस्तों ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को ठहरने के लिए कोई परेशानी न हो और ज्यादातर स्टूडेंट एक एक जगह पर ठहर सके। हालांकि सभी स्टूडेंट एक जगह तो नहीं ठहर पाते, कई जगह ठहरते हैं लेकिन वो ग्रुप में रुकते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि उनको ऐसी जगह पर रुकवाया जाए कि उनको आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ न उठानी पड़े, बहुत ज्यादा दिक्कतें न हो, बहुत ज्यादा समय न लगाना पड़े। दोस्तों कुल मिलाकर के ये एकेडमी की 15 दिन की क्लासेस के बारे में है, लेकिन इससे पहले कि आप सब रजिस्ट्रेशन कराएं मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप इसके क्लासेस वाले को क्लिक करें और वहां उसके डिटेल्स को देखें क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस किस तरह की चीजें हैं, और फिर बहुत सोच समझकर फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और पूरे कमिटमेंट के साथ फिर आप आने के बारे में सोचें। तो दोस्तों ये 15 दिन की क्लासेस के बारे में थी। लगातार इसके बारे में मेल आ रहे थे और मैं कुछ कहना जरूरी नहीं समझता था, लेकिन जब बहुत ज्यादा मेल आने लगे तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी सी बातें इसके बारे में भी आप लोगों को सूचित कर देनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ मेल पर जाने के .com पर जाने के बाद भी डाउट रह जाते हों, कोई चीज क्लियर ना होती हो, तो मैं उसे क्लियर कर दूं। तो दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया है। मित्रों, अब मैं आज के लाइफ मैनेजमेंट में एक अलग तरीके से आज आपसे बात करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं एक प्रांजल पाटिल हैं, जो लड़की हैं, उल्लासनगर महाराष्ट्र से हैं, जिन्होंने अभी के सिविल सर्विस में 773वीं रैंक हासिल की है। उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और यह बधाई मेरे अपने आप सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से है, एकेडमी की मेरी पूरी टीम की ओर से है, मैडम की ओर से है और मेरी ओर से भी है। मित्रों, ये जो प्रांजल पाटिल हैं, ये किस लिए बधाई के पात्र हैं मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए नहीं कि वो हमारी एकेडमी की स्टूडेंट रही है, नो, वो हमारी एकेडमी की स्टूडेंट नहीं रही है और मेरे पास कोई ऐसी भी सूचना नहीं है कि वो हमारे डेली ऑडियो को सुनती थी या नहीं सुनती थी। मैं मान करके चल रहा हूं कि नहीं सुनती होंगी, लेकिन अगर वो सुनती होंगी, क्योंकि मेल उन्होंने नहीं लिखा है। ये जो मेल भेजा है मुझे अभिजीत, हमारे एक स्टूडेंट हैं अभिजीत पाटिल, उन्होंने भेजा है। तो सबसे पहले तो मैं अभिजीत पाटिल को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस सूचना से परिचित कराया। दोस्तों, इनकी जो स्टोरी है प्रांजल पाटिल की, वो बहुत अद्भुत है और बहुत ही मोटिवेशनल है और बहुत ही रियलिस्टिक है। आप ध्यान से सुनिए और इस स्टोरी को सुनने के बाद उसमें से आप ये निकालने की कोशिश कीजिए कि सफल कैसे लोग होते हैं, किस तरह के लोग सफल होते हैं या क्यों होते हैं। क्या सफलता का बिल्कुल कोई एक निश्चित मापदंड है कि ये चीजें होंगी तभी आपको सफलता मिलेगी, या फिर सफलता के मापदंड कुछ ऐसे होते हैं कि हमको अपने तरफ से अपने मापदंड तैयार करने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके स्टोरी को सुनने के बाद आपको इस बारे में कोई रास्ता मिल सके, कोई मार्गदर्शन मिल सके। तो मित्रों, इनका नाम है प्रांजल पाटिल, जो उल्लासनगर महाराष्ट्र से हैं, जिन्होंने अभी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 773वीं रैंक हासिल की है। और उससे भी बड़ी बात है कि यह रैंक इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल की है और इनकी उम्र है अभी 26 साल। अभी तक आपको ये सब चीजें सामान्य सी लग रही होंगी, सामान्य सी है भी, ठीक है, 26 साल की उम्र है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने ये रैंक हासिल कर ली। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि यह आपको अंदर से थोड़ा सा विचलित करे, मोटिवेट भी करे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये दिव्यांग हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। पहले जो विकलांग शब्द प्रयोग किया जाता था, वो दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। और किस मायने में दिव्यांग है कि उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता। जब वो 6 साल की थी तो अनफॉर्चुनेटली उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, सोच के देखिए। लेकिन क्या आंखों की रोशनी चले जाने के बाद शरीर की ऊर्जा भी चली जाती है, मन का उल्लास भी चला जाता है, करने की सारी संभावनाएं भी नष्ट हो जाती हैं? मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन्होंने हौसला नहीं खोया। और जब अभिजीत पाटिल, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप उनके पास गए और प्रांजल से इन्होंने बात की है और वही बातें मुझे उन्होंने लिख करके भेजी अपने बातचीत के आधार पर। जब वो हाई स्कूल में थी तभी उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। ये मामला कुछ कुछ वैसा ही है जैसे टीना डाबी जी ने जब वो 10th में थी तभी फैसला कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। मित्रों, यहां आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने वाले जो लोग हैं वो किस तरह के लोग होते हैं। वो फैसला करते हैं, लंबा फैसला, पहले बहुत पहले फैसला कर चुके होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो तैयारी शुरू कर चुके होते हैं। अर्तिका जी ने, जिन उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने सिविल सर्विस क्वालिफाई किया है, और शायद मैं पहले उनके बारे में बताते हुए मैंने कहा था कि वो लखनऊ से हैं। असली में जब मैंने चैनल्स पर न्यूज देखी थी तो उसमें लखनऊ बताया जा रहा था, इनफैक्ट वो वाराणसी के हैं। मेरे फिर से कुछ प्रिय स्टूडेंट और शुभचिंतक जिनके प्रति मैं आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने मुझे इसे करेक्ट किया है कि सर वो मूलतः वाराणसी की रहने वाली हैं। वो MBBS डॉक्टर हैं, उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया और वो भी 26 ईयर्स की हैं। लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा जो पॉइंट था वो ये था कि उनके भाई ऑलरेडी सिविल सर्विस IAS में हैं और डेफिनेटली उनसे उन्हें मार्गदर्शन मिला होगा। तो दोस्तों, इसके जो सिस्टम होते हैं, जो रहस्य होते हैं, जो मूल बातें होती है, रहस्य नहीं कहना चाहिए, हम लोग की आदत पड़ गई है रहस्य कहने की, रहस्य जैसा कुछ भी नहीं है। सारी चीजें बड़ी रियलिस्टिक तरीके से हैं, यथार्थवादी हैं, सामने दिखाई देती हैं। अगर हम नहीं देखना चाहें तो फिर बात अलग है। तो यह पता लगता है कि वास्तव में सफलता मिलती कहां से है। तो इनके 26 इयर्स की एज में जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो प्रांजल ने जो क्वालिफाई किया है मित्रों, इस सफलता का एक रहस्य तो आपको यहां मिलेगा कि वो जब हाई स्कूल में ही थी तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विस क्वालिफाई करना है, सिविल सर्विस ज्वाइन करना है, राइट। और आप देखिए कि चूंकि आंखों की रोशनी चली गई है तो अब उनके पास पढ़ने का जो साधन रह गया वो केवल ब्रेल रह गया है, और ब्रेल लिपि के जरिए उन्होंने अपनी पढ़ाई की। सोच करके देखिए, केवल पढ़ाई ही नहीं की, मजेदार बात है कि वो बकायदे स्पीच कंपटीशन में भाग लेती थीं, और उन्होंने भाग ही नहीं लिया है बल्कि उसमें पुरस्कार भी जीते, और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर उन्होंने अपना एमए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से इंटरनेशनल रिलेशंस में किया। नो डाउट वो पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट है, लेकिन एमए किया उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस से, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी से जो बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में माना जाता है। सोचिए कि वहां वो पहुंची, मतलब ये जो आई साइट लूज करने की जो बात थी, जो लॉस हो गया था, आंखों की जो रोशनी चली गई थी, वो उनके दिल और दिमाग की रोशनी को गायब करने में सक्षम नहीं हो सकी, उसने समर्पण कर दिया था दोस्तों। अब आप देखिए कि फिर ये आया कि फिर वो अपनी तैयारी करने लगी, और तैयारी उन्होंने खुद ही की है। मेरे पास जो ईमेल है दोस्तों उसमें जो शब्द आए हैं, सी प्रिपेयर्ड ऑन हर ओन एंड देन फॉर प्रैक्टिस ज्वाइंट टेस्ट सीरीज इन दिल्ली। बस सभी पूरी तैयारी खुद की, हाँ प्रैक्टिस के लिए उन्होंने दिल्ली में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। ये उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मुझे मिला है उनकी तैयारी के बारे में दोस्तों, वो मैंने आपके सामने रखा है। अब आप देखिए कि एक जो बात इन्होंने बड़ी चौंकाने वाली कही है और जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि जब आप कभी भी ऐसे लोगों से मिलते हैं तो यही पूछते हैं कि आप हताश नहीं हुए, कि आप निराश नहीं हुए का, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये दिव्यांग हैं, मन में बहुत ज्यादा निराशा का भाव होगा, लग रहा होगा कि हम कुछ नहीं कर पाते, तो इसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने जो बात कही है मित्रों देखिए कि कैसे कितनी भी नकारात्मक स्थितियां क्यों ना हो उसे सकारात्मकता में बदला जा सकता है। यस, आप मुझ पर पत्थर फेंकिए और अगर मुझ में समझदारी है तो मैं आप कि उन पत्थरों को इकट्ठा करते 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 अपनी दीवार बना सकता हूं, चार दीवारी खड़ी कर सकता हूं, अपनी बाढ़ तैयार कर सकता हूं उन पत्थरों से। हाँ, ये बात अलग है कि मैं उससे अपना सिर भी फूटने दे सकता हूं या वो पत्थर उठा करके आपका भी सिर फोड़ सकता हूं, लेकिन अगर मैं उसे सकारात्मक रूप में लूंगा तो ठीक है, आप फेंकते जाइए पत्थर, में इकट्ठा करते जाऊंगा और मेरी दीवार खड़ी हो जाएगी। तो ये तो हमारे ऊपर होता है दोस्तों, जिसे मैं कहता हूं कि सच पूछिए तो जो एक्शंस होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उस एक्शन के प्रति रिएक्शन कैसे करते हैं, उस इवेंट्स को हम लेते कैसे हैं। अब आप देखिए कि जब इनसे इसी तरह से प्रश्न किया गया प्रांजल से कि आपको निराशा नहीं हुई, मतलब आपको कैरियर को आपने इतने टॉप पर पहुंचा दिया, तो वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं, सी सेड, जो अभिजीत ने लिखा है मैं वही शब्द आपके सामने रख रहा हूं, व्हेन यू हैव disbelief about yourself and your goal, then only you get motivated to prove all this wrong. You just need to move on honestly. बहुत सुंदर वाक्यों में उन्होंने अपनी बात कही है कि जब आपको अपनी क्षमताओं पर अविश्वास होने लगता है, जो आपने लक्ष्य बनाया है उस पर भी आपका भरोसा नहीं रह जाता, आपको लगने लगता है कि मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है और फिर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, तभी सही मायने में आपके अंदर वो जोश पैदा होता है कि नहीं, मैं इस विश्वास को गलत ठहरा कर रहूंगा, मैं इस विश्वास को झूठा कर दूंगा, और देन यू मस्ट जस्ट नीड टू मूव ऑन ऑनेस्टली। फिर करना क्या है आपको? कुछ नहीं, आप ईमानदारी के साथ चलना शुरू कर दीजिए, बस दैट्स ऑल। बहुत खूबसूरत वाक्यों में प्रांजल पाटिल ने यह बात कही है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने अगर इतनी अच्छी रैंक हासिल की है तो डेफिनेटली मैं मान करके चलता हूं कि भाषा पर उनकी पकड़ तो होगी ही, और भाषा पर पकड़ होना सिविल सर्विस की सफलता का एक बहुत बड़ा आधार होता है। तो मित्रों, बहुत पहले अगर मेरे पुराने जो श्रोता हैं उनको ध्यान होगा कि मैंने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पर लंबी बातचीत की थी, समझाने की कोशिश की थी, फिर यदि कभी मौका मिला तो मैं इस बात पर आऊंगा। ये यही है, मैंने उसमें सिद्ध किया था कि जब आदमी जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है तो वही वह मौका होता है जब उस इन्फीरियोरिटी से उबरने के लिए अपनी ताकतों को कई गुना ज्यादा बढ़ाता है, और सच में उसका कद इतना लंबा होता चला जाता है कि वो इन्फीरियोरिटी उसके सामने बौनी दिखाई देने लगती है। ये होता है, जितने भी कलाकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, महान लोग हुए हैं, ये उनको उनके जीवनी इस बात को बताती है कि उन्होंने अपनी इन्फीरियॉरिटी से उबरने के लिए ही ये सारी चीजें हासिल की हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम में कोई कमी है तो वो हमें नष्ट ही कर देगी। सच बात यह है कि जो हमारे अंदर कमी है वही हमारा निर्माण करती है, क्योंकि हम उस कमी से उबरना चाहते हैं, उसको ढकना चाहते हैं, उसको हराना चाहते हैं, और यही बात प्रांजल पाटिल ने कही भी है। तो प्रांजल, एक बार फिर से मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आपके खूबसूरत शब्दों के लिए भी, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं अपने सभी दोस्तों की तरफ से कि वो अगले अटेम्प्ट में आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा दें जो आपका अपना लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स, लाइफ मैनेजमेंट में आज बस इतना ही। थोड़ा सा अधिक वक्त मैंने ले लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वक्त लिया जाना जायज है, इसके लिए आप लोग मुझे माफ करेंगे। अब मैं आता हूं फ्रेंड्स कल के AIR न्यूज पर। कल के AIR न्यूज में केवल एक ही खबर इम्पॉर्टेंट मुझे लगी, और वो खबर है जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनका एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा। आपको ध्यान होगा कि फ्राइडे को, शायद थर्सडे या फ्राइडे, मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे को ही मैंने मॉरिशस के साथ भारत ने जो संधि की है दोहरे कराधान को के लिए, संधि की है खत्म करने के लिए, उसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की थी। मैंने समझाने की कोशिश की थी कि आप इसके केवल बेसिक्स को समझिए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कुछ स्टूडेंट्स के मेल आए और उन्होंने ये बताया कि सर, उससे पहले ही दिन आपने जो इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्लिपिंग्स डाली थी उस दिन तो समझ में नहीं आई, लेकिन बेसिक्स को समझने के बाद वो क्लिपिंग्स फिर से समझ में आ गई। मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप लोगों की जो मेल आए ऐसे इश्यूज पर ज्यादा आने चाहिए कि जो बताया जा रहा है उससे आपको क्या फायदा हुआ, किस तरीके से बताया गया, क्या और किसी तरीके से बताया जाना चाहिए था, भाषा कैसी थी, उदाहरण कैसे थे, समझ में आया कि नहीं, सरल था कि नहीं, या जटिल ही था, या कुछ समझ में नहीं आया। जब आप इस तरह की चीजों पर अपने ओपिनियन देंगे तो सच पूछिए तो वो ज्यादा ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो कुछ स्टूडेंट ने लिखा कि सर, मॉरिशस के साथ जो संधि भी थी वो अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो कुछ स्टूडेंट्स, क्या मतलब बहुत ही थोड़े से स्टूडेंट ने, अगर मैं मेल के आधार पर प्रतिशत निकालूं तो वो बहुत कम प्रतिशत है। मित्रों, आज के न्यूज, कल के न्यूज में आपने स्टेटमेंट सुना कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा, शायद राज्य वित्त मंत्री का स्टेटमेंट था कि मॉरिशस के साथ जो ये संधि हुई है इससे इस बात के प्रति कोई आशंका नहीं व्यक्त की जानी चाहिए कि विदेशों से हमारा निवेश कम आएगा, और बल्कि विदेशियों ने जो हमारे यहां निवेश कर रखा है ये वापस जाना शुरू हो जाएगा। बोले ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, हमें लगता है ऐसा नहीं होगा। मित्रों, अब फिर से एक प्रश्न बनता है, जैसे सिविल सर्विस की देखिए तैयारी कैसे की जाती है, क्योंकि अब ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है तो अब हमें सोचना इस बात पर है कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं। लोगों को यदि आशंका है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगा या जो ऑलरेडी इन्वेस्ट हुआ है वो वापस चला जाएगा, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? यानी कि इस पूरे के पूरे संधि में ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से डीमोटिवेट करेंगे, राइट? अब ये आपके अपने सोचने की बात है कि आप इसके बारे में सोचिए। दरअसल दोस्तों, सिविल सर्विस की अगर आपको रियल में तैयारी करनी है तो उसका आधार तरीका केवल यही हो सकता है। अब आपको देखिए, मैं थोड़ी सी बातें, चूंकि वो बेसिक्स मैं आपको बता चुका हूं तो उस बेसिक्स से आगे ही थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा। पहले क्या था दोस्तों, पहले ये था कि जो मॉरिशस में जो कंपनी है उन कंपनियों ने अगर भारत में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जब हम इन्वेस्टमेंट बात करते हैं दोस्तों तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि उन्होंने फैक्ट्री खोल रखी, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि उन्होंने किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगा रखा है, जैसे रियल एस्टेट वगैरह में प्रॉपर्टी में पैसा लगा रखा है उसको हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं, या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, निवेश, उस रूप में निवेश है ना, मतलब यहां जो स्पेसिफिक टर्म में होगा। तो अगर किसी भी मॉरिशस की कंपनी ने, चाहे वो भारतवासी की ही कंपनी क्यों ना हो जो मॉरिशस में खुली हुई, अगर उसने पैसा लगा रखा है और फिर अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचता है, राइट, तो बेचने पर उसे उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यह पहले की स्थिति थी तो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता था। 1983 में इस तरह की मॉरिशस के साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधि हुई थी, राइट। अब सरकार ने उसको उलट दिया है, अब उसने कहा कि नहीं, टैक्स देना होगा। अब टैक्स देना होगा तो बट नहीं चलेगा। अब सोच करके देखिए कि जिसने भी भारत के मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा होगा, शेयर वगैरह ले रखे होंगे, अब उसको लगेगा कि यार अब अगर इसमें प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। आपको मैंने फ्राइडे को बताया था, ध्यान होगा कि ये प्रोविजन ये किया गया है कि पहली तो बात यह कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से लागू होगा, 2017 से लागू होगा, फिर शुरू के दो साल तक जो कैपिटल गेन पर जो टैक्स होता है 10%, तो उसका आधा ही देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा। 19 के बाद फिर उन्हें पूरा देना पड़ेगा, राइट। अब आप थोड़ा सा, आपको जब आप इस टॉपिक पर सोचेंगे तो मैं आपको केवल वो तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे सोचेंगे। मान लीजिए कि मैं विदेश में, मैं मॉरिशस में रह रहा हूं और मैं अपना 100 करोड़ रुपया यहां मार्केट में लगाता हूं, भारत के मार्केट में शेयर खरीदता हूं, उस 100 करोड़ रुपए से मुझे 10% का प्रॉफिट होता है, 10 करोड़ रुपए का फायदा होता है मान लीजिए। तो 2019 के बाद अगर मैं ये प्रॉफिट करता हूं तो 10 करोड़ रुपए का जो मेरा प्रॉफिट है वो 10 करोड़ रुपए टैक्स में चला जाएगा, कैपिटल गेन में चला गया ना, 10% कैपिटल गेन हो गया, तो मैंने जितना कमाया उतना ही मेरा टैक्स में चला गया। तो बट नेचुरल है कि मैं तभी भारत के मार्केट में अपना पैसा लगाऊंगा जब मुझे भरोसा होगा कि मेरी जो इनकम होगी वो मोर देन 10% होगी, तभी मैं लगाऊंगा, क्योंकि 10% तो मुझे टैक्स में देना पड़ेगा। ये बात अलग है कि अभी 2 साल तक के लिए उसमें छूट है, वो 5% तक है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में मैं सोचूंगा कि भाई मुझे भारत के मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, फिर मैं दूसरे ऑप्शन ढूंढूंगा, दुनिया के और भी दूसरे मार्केट है, अगर मुझे वहां ज्यादा फायदा दिखेगा तो मैं उस मार्केट में चला जाऊंगा, और बल्कि भारत में जो मेरा पैसा लगा है वो मैं निकाल लूंगा। तो इसको आधार बना करके ये अप्रिहेंशन किया गया है, ये आशंका व्यक्त की गई है कि पैसा निकाला जा सकता है। तो मित्रों, इसके बारे में अभी जो आप एक दो तर्क दे सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पहली बात तो यह है कि अभी 2 साल तक तो इसका सिर्फ 5% है, केवल 5% तक है, 2 साल के बाद 10% होगा। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों, वो ये दिया हुआ है कि ये जो टैक्स लगेगा ये केवल उस प्रॉपर्टी पर लगेगा जो 1 अप्रैल 2017 के बाद खरीदी जाएगी, मतलब अभी जो आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो यानी कि हमारे पास जो पैसा आया हुआ है ऑलरेडी, उस पर तो हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो उस पैसे को क्यों निकालेंगे, और जिस दिन वो बेचेंगे टैक्स फ्री होगा। हाँ, 2017 के बाद हो सकता है कि फिर हमारे यहां पैसा आना रुके, लेकिन जो पैसा ऑलरेडी आया हुआ है उसके वापस जाने का डर फिलहाल नहीं है। मित्रों, मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, शायद आपके समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया हो तो फिर से इस ऑडियो को सुनिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको समझना ही पड़ेगा। अगर इससे नहीं समझ पाते हैं तो आप किसी और चीज से समझ लीजिए। और आपके इस सपोर्ट के लिए मैं आज आपको दैनिक भास्कर की क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जो बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें इन्होंने बहुत डिटेल में बताया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो मॉरिशस के साथ जो संधि हुई है वो एक मुझे सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात लग रही है। और इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि इससे कैसे काले धन पर नियंत्रण लगेगा, और उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे जो भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, सरकार के पास काला धन आना रुकेगा, जो कि अभी सरकार का एक लक्ष्य है, देश में काला धन आना रुकेगा, सरकार के पास तो नहीं कहना चाहिए, माफी चाहूंगा इस शब्द के लिए, तो काला धन आना रुकेगा, क्योंकि काला धन कहीं ना कहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता ही है। और फिर ये लिखा कि ठीक है, थोड़ा बहुत जो नुकसान होगा उसकी पूर्ति टैक्स से भी हो जाएगी, लेकिन जो भी हो, इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मान लीजिए कि किसी को एक नशे की आदत हो गई है, तो हित में तो उसके यही है कि चाहे शुरुआत में नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन उसे उस नशे से मुक्ति दिलाई जाए, लंबी अवधि में डेफिनेटली इससे फायदा होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं, जो लीगल वर्क होते हैं लंबी अवधि में तो आपको फायदा देंगे ही देंगे, शुरू में भले ही कुछ आपको लगे कि नहीं नहीं इलीगल काम ज्यादा फायदा पहुंचाता है, वो केवल शुरू की बात होती है, लंबे समय तक वो चीजें चल नहीं पाती हैं। तो मित्रों, ये आज मैंने आपसे मॉरिशस संधि के बारे में बात की है, न्यूज में और कुछ भी नहीं था, मुझे अपने द्वारा किया गया वायदा याद है, मैंने कहा था कि आपको मैं बैंकरप्सी बिल के बारे में बताऊंगा, आज भी इतना वक्त नहीं रह गया है, लेकिन वो मेरे ध्यान में है, वो मैं आप लोगों से उसकी चर्चा करूंगा, हो सकता है कि कल चर्चा करें या उससे आगे देखते हैं, जिस दिन भी वक्त मिलेगा हम उस बैंकरप्सी बिल के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग पर, और न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स है जिसमें मैं स्पेशली आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। दैनिक जागरण की एक क्लिपिंग है, इंटरनेट उपनिवेशवाद पर अंकुश। ये मुझे लगता है कि जो साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं उसको लेकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, दैनिक जागरण का ही एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और खासकर उन्होंने अभी जो टॉपर रही है टीना डॉबी उनको लेकर के लिखा है, और ये खासकर किस तरह से भारत में शुरू से लेकर के जो दलित समाज है उसके उत्थान के लिए कोशिश की गई है, तो उसका एक अच्छा एक सार सा उन्होंने दिया है। तो ये हिस्ट्री का भी है और ये सोशियोलॉजी का भी पार्ट है, तो मैं उस लिहाज से आपको ये आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, तो प्लीज आप इस आर्टिकल को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और भी दूसरे आर्टिकल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं मित्रों, उनकी अलग से चर्चा करना मैं जरूरी नहीं समझता, उन्हें आप सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने ढंग से देख लीजिएगा। मित्रों, अब मैं थोड़ी सी कुछ सवालों के जवाब देना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स ने ईमेल के जरिए पूछे हैं। तो सबसे पहले तो ईमेल लिखने वाले अपने सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार उनके प्रति व्यक्त करता हूं। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि उन्हें कौन सा न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए। दोस्तों, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप देखिए, मैं नाम नहीं बताता, मैं तो आपको 8-8 न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन आपको 2 न्यूज़पेपर्स अपने फुल फ्लेज्ड पढ़ने ही चाहिए। एक नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर हो और एक अर्थशास्त्र से जो आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ न्यूज़पेपर हो। अगर आप आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं भी पढ़ते हैं तो एक नेशनल न्यूज़पेपर्स तो आपको पढ़ना ही चाहिए। मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इन्हें आप अच्छे न्यूज़पेपर्स में मान सकते हैं, अगर अवेलेबल हैं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद मित्रों, मेरे पास पूछा गया है कि इस बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होते हैं? दोस्तों, ये सिर्फ एक भ्रम है, हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लोग ज्यादा बैठते हैं तो बट नेचुरली कि उनका सिलेक्शन ज्यादा होता है। साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं जितने भी सेलेक्ट होते हैं वो ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के ही बैठते हैं, तो हमें लगता है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। जहां तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का सवाल है मित्रों, ये बहुत ही एक डिबेटेबल नहीं, मतलब इसको मैं प्रूव कर सकता हूं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्यों सेलेक्ट ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं आपको ये एश्योर कर देता हूं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सिर्फ इसलिए सेलेक्ट नहीं होते क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। डेफिनेटली मीडियम उनका इंग्लिश होता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के होने के साथ साथ उनकी और कुछ विशिष्टताएं होती हैं जिसकी वजह से वो सेलेक्ट होते हैं। तो अगर कोई सोचे कि मेरा हिंदी मीडियम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं तो अंग्रेजी भी मेरी ठीक ही ठाक है, तो मैं सेलेक्ट अब मैं बैठ जाऊं तो मेरा इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन हो जाएगा, तो केवल मीडियम के दम पर सिलेक्शन किसी का होता होगा। मुझे लगता है कि इस भ्रम से आप लोगों को मुक्ति पानी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी पकड़ है, आपकी भाषा ठीक है, मतलब आप अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, इस पर आप विश्वास कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं एक बार धन्यवाद व्यक्त करूंगा दिनेश कुमार के प्रति भी, जो हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं और दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने लिखा कि वो जिस कॉलोनी में रहते हैं वहीं टीना का भी परिवार रहता है, टीना भी वहीं रहती हैं, तो वो टीना से भेंट करके आए और उनसे मिलने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा, और जो मैंने टीना के बारे में या उनको जो बधाई दी थी 10 मिनट का, उन्होंने उनको ऑडियो सुनाया भी और उनके पेरेंट्स को ऑडियो बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया है, मुझे कि आप सबको ही धन्यवाद दिया है। तो दिनेश, तुम्हारी इस कोशिश की मैं सराहना करता हूं कि अंततः तुमने हिम्मत जुटाई और बिना किसी के कहे खुद गए। यस, हम सब में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, कोई क्या कहेगा, ठीक है, मना ही तो कर देगा, कोई बात नहीं, मना कर देगा तो हमने कोशिश तो कर ली ना, ये जिंदगी के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है। और चूंकि तुम्हारे पास एक मौका था कि तुम वहां जाकर के मिल सकते हो और तुमने ये कदम उठाया, इसकी मैं बहुत बहुत सराहना करता हूं और इस बात की भी सराहना करता हूं कि तुमने इस बात की मुझे सूचना भी दी। तो मित्रों, अब मैं कुछ उन दोस्तों के नाम ले रहा हूं जिन्होंने मेल लिखे हैं। उनमें है संतोष गुप्ता वाराणसी से, कुलदीप यादव फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से, विपुल वार्ष्णे बरेली उत्तर प्रदेश से, सौरभ भटीजा बांदा उत्तर प्रदेश से, सुभाष कुमार ठाकुर मुजफ्फरपुर बिहार से, भरत कुमार भिवानी हरियाणा से, आनंद शर्मा ओम ठाकुर सतना मध्य प्रदेश से, कैलाश शाश्वत अग्रवाल वाराणसी से, अर्जुन नवीन परमार जूनागढ़ गुजरात से, आशीष कुमार भागलपुर बिहार से, मनीष सिंह इलाहाबाद से, गुरविंदर सिंह गोपालपुरी पंजाब से, पुष्पेंद्र कुमार मुंगेर बिहार से, आसिफ इकबाल शाह जम्मू एंड कश्मीर से, कृपेश कुमार अहमदाबाद से, राजेश कुमार वैशाली बिहार से, रुपेंद्र कुमार और अखिलेश कुमार भागलपुर बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।